नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में 830 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कोलकाता को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाली तीन अमृत भारत रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। प्रधानमंत्री ने बालागढ़ में विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम की भी आधारशिला रखी। इसमें अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल और एक ओवरब्रिज शामिल है। श्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी परियोजनाएं पश्चिम बंगाल के विकास को गति प्रदान करेंगी।
बालागढ़ में बनने वाला एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम हुगली और आसपास के इलाकों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा। इसे कोलकाता शहर में ट्रैफिक और लॉजिस्टिक का दबाव कम होगा। गंगा जी पर जो जलमार्ग बना है उसके जरिए कार्गो मूवमेंट और बढ़ेगा। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हुगली को वेयरहाउसिंग और ट्रेडिंग हब बनाने में मदद करेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वोत्तर भारत का विकास आवश्यक है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे पश्चिम बंगाल के रेल संपर्क के लिए काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि बंगाल में जलमार्गों की अपार संभावनाएं हैं और केंद्र सरकार इस पर भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता में एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कैटामारान नौका का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने जयराम बती बरो गोपीनाथ मैनापुर नई रेल लाइन तथा मैनापुर और जयराम बती के बीच नई ट्रेन सेवा का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के युवा, किसान और महिलाओं के हित के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस अवसर पर राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस, केंद्रीय मंत्री डॉ सुकांत मजुमदार, शांतनु ठाकुर, पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी और अन्य उपस्थित रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नागांव जिले के कलियाबोर में 6,950 करोड़ रुपए से अधिक की काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी देश के संविधान को नष्ट कर रही है। श्री रिजिजू ने पश्चिम बंगाल की भाजपा इकाई के पोस्ट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा करते हुए आरोप लगाया कि टीएमसी भारतीय नागरिकों के बुनियादी अधिकारों को छीन रही है और अवैध प्रवासियों को संरक्षण दे रही है। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने अंतर्राज्यीय निवेश धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 8 साइबर जालसाजों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने कहा कि यह गिरोह लोगों को व्हाट्सएप कॉल के जरिए फर्जी निवेश योजनाओं में फंसाकर धोखाधड़ी करता था। जम्मू कश्मीर में आज किश्तवाड़ जिले के चतरू में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि क्षेत्र में आतंकवादियों की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान गोलीबारी शुरू हुई। गोलीबारी अब भी जारी है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम ग्रामीण के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण नहीं किया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी में कोई कमी नहीं की जाएगी और रोजगार की कानूनी गारंटी पहले की तरह जारी रहेगी। भारतीय रेल अगले 2 वर्षों में 7,900 किलोमीटर से अधिक पटरियों के नवीनीकरण की योजना बना रही है। रेल मंत्रालय ने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 7,500 किलोमीटर से अधिक पटरियों के नवीनीकरण का कार्य चल रहा है। मंत्रालय ने बताया कि तेज गति से चलने वाली पटरियों की लंबाई लगभग दोगुनी हो गई है, जो 2014 में 31,000 किलोमीटर से बढ़कर अब 84,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। मौसम विभाग ने कल तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सुबह और रात के समय घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की संभावना है। और खेलों में इंदौर में 3 मैचों की श्रृंखला के तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 338 रन का लक्ष्य दिया है। न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 337 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।